समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून करिश्मा।
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु
Yes, it's Guru Purnima today. On this auspicious occasion, let us honor the guiding lights of our lives, our teachers and mentors. A guru or a teacher is the remover of darkness, a profound metaphor for the teacher who dispels ignorance and illuminates the path of knowledge and self-realization. In Vedic culture, the guru is not limited to a person standing in a classroom, but encompasses the divine principle of wisdom itself. Right from when we start our life on this earth, our parents are our first gurus. Our teachers in school and college, they come next. And then throughout our days in this world, we keep meeting people who teach us something in their own way. And they may be our spiritual gurus as well. Let us celebrate our gurus who inspire, innovate and ignite the spirit of learning across the country. And now, Karishma, shall we begin with the news headlines?
Bilkul.
Supreme Court permits Election Commission to proceed with its special intensive revision of electoral rolls in Bihar. Poll panels should also consider accepting key identity documents, including Aadhaar.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण वसूली निष्पक्ष और सम्मानजनक तरीके से किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन की आड़ में वित्तीय शोषण नहीं किया जाना चाहिए।
ईडी बुक्स 29 सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग विजय देवराकोंडा, प्रकाश राज एंड राणा दग्गुबाती फॉर एंडोर्सिंग बेटिंग एप्स।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तेज बारिश से गुरुग्राम ठप।
एंड इन क्रिकेट, क्लैश अंडरवे बिटवीन इंडिया एंड होस्ट्स इंग्लैंड इन द थर्ड टेस्ट मैच ऑफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी एट लॉर्ड्स। And now comes our segment, Dateline India, in which we take a look at developments taking place in India and across the globe as well. And today's topic is Global Energy Independence Day. If we don't act on becoming energy independent today, then we cannot save ourselves from a dark future. Isn't it, Karishma?
Bilkul. Aur iske saath hi...
Yeah.
जैसा कि एक कोट का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी कि टॉम एलन ने कहा था कि ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा स्वतंत्रता का आधार है।
जी, ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 10th of July एवरी ईयर मार्क्स अ पिवोटल मोमेंट फॉर कंट्रीज स्ट्राइविंग टू अचीव एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। एनर्जी इंडिपेंडेंस मीन्स हैविंग कंट्रोल ओवर आवर एनर्जी सप्लाई, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल्स एंड मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल एनर्जी मार्केट फ्लक्चुएशन। This concept involves diversifying energy resources, promoting energy efficiency and transitioning to renewable energy technologies. And achieving energy independence can lead to increased energy security, economic stability and reduced vulnerability to global price fluctuations and geopolitical instability.
बिल्कुल, और वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों के लिए एक आह्वान की है कि वे गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ, अधिक टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को अपनाने पर अपना महत्व दें। तब से इस दुनिया भर में व्यापक रूप से मान्यता मिल गई है और यह ऊर्जा स्वायत्तता और विभिन्न प्रकार के टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों के महत्व पर प्रकाश डालता है।
यस करिश्मा, विद क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एंड द डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजिंग, दिस डे सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द क्रिटिकल नीड फॉर इनोवेशन एंड कमिटमेंट टू सस्टेनेबल एनर्जी। डिड यू नो करिश्मा दैट एनर्जी इंडिपेंडेंस इज वाइटल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एज वेल। Nations reliant on imported fossil fuels are vulnerable to price volatility and supply disruptions.
जी हाँ, घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विकसित करके देश इन बाहरी झटकों से खुद को बचा सकते हैं। इससे न केवल ऊर्जा की कीमतें स्थिर होंगी बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन के जरिए स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी सहारा मिलता है।
Yes, dependence on foreign energy sources can be a geopolitical risk, leaving countries susceptible to political instability and conflicts in energy-producing regions. By harnessing domestic renewable energy, nations can reduce these risks and secure a more stable energy future. Energy independence thus enhances national security.
मुझे यकीन है कि हमारे श्रोता अच्छी तरह से जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना कितना जरूरी है। जीवाश्म ईंधन का निष्कर्षण और उपभोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रमुख योगदान करता है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। सौर, पवन और जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करने से कार्बन उत्सर्जन कम होता है और आगे बढ़ने के लिए स्थायी रास्ते बनाने में भी मदद मिलती है।
Claimed in Los Angeles on 10th of July 2005 in honor of Nikola Tesla's birthday, this day has gained global recognition and emphasizes the importance of energy independence and diversified sustainable energy sources as well.
निकोला टेस्ला को घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है जो ऐसी इलेक्ट्रिक मोटरों का आधार बना। उन्होंने चित्रणीय विद्युत संरचन प्रणाली भी प्रस्तुत की और 1891 में अपनी प्रसिद्ध कुंडली बनाई है, एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग आज भी रेडियो इंजीनियरिंग में किया जाता है।
Energy transition holds numerous benefits for the planet. The energy transition is a key part of the strategy to limit global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels by mid-century.
ऊर्जा उत्पादन और खपत मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ऊर्जा परिवर्तन इन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है और स्वाभाविक रूप से हरित और स्वच्छ स्रोतों पर स्विच करने से स्वास्थ्य में भी सुधार होता है।
However, while the sun's energy may be free, the technology to harness it is not. If we don't find ways to make solar power more accessible, we risk leaving a substantial portion of the global population behind.
और यदि हम एक हरित और ऊर्जा स्वतंत्र भविष्य के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी लाने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए सौर, पवन और जल विद्युत में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।
Yes, we must enhance energy storage and grids and develop better storage and grid infrastructure to manage intermittent renewable energy. And of course, as we look towards a cleaner and more sustainable world, Global Energy Independence Day reminds us of the collective effort required to make this vision possible.
तो ये दिन केवल हमारे द्वारा की गई प्रगति का जश्न मनाने के बारे में नहीं है, सभी के लिए हरित और टिकाऊ भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी आवश्यक है।
Right, and coming to our next topic of the day, it's National Fish Farmers Day today.
राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जुलाई को मत्स्य कृषकों के महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में मनाया जाता है जो भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण रोजगार सृजन करने और एक स्थायी जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर इज लाइक रेगुलर फार्मिंग बट इंस्टेड ऑफ ट्रैक्टर्स एंड वीट फील्ड्स यू हैव गॉट पॉन्ड्स, टैंक्स एंड अ होल लॉट ऑफ gill-powered livestock. Just like a farmer grows crops on land, a fish farmer grows fish in the controlled water environments, feeding them, protecting them, and harvesting them sustainably.
राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर के एच अली कुन्ही के अग्रणीय प्रयासों को भी श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने 1957 में आज ही के दिन हाइपोफिशेशन तकनीक के माध्यम से भारतीय मेजर कॉर्प्स में प्रेरित प्रजनन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था, एक ऐसा नवाचार जिसने भारत में अंतर्देशीय जलीय कृषि में क्रांति ला दी। आज हम उन लोगों के समर्पण का सम्मान करते हैं जो पानी के नीचे जीवन की खेती करते हैं।
The official theme for National Fish Farmers Day this year celebrates the empowerment of fish farmers and sustainable aquaculture, which is declared by the Ministry of Fisheries. The theme is Empowering Fish Farmers for a Sustainable Blue Economy.
इसका ध्यान सतत संसाधन प्रबंधन, क्षमता निर्माण, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन तथा आधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी संचालित पहलों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने पर है।
And fish farmers have played a transformative role in advancing fish productivity, conserving aquatic resources and meeting the growing demand for fish-based protein across the nation. And that is why the fishery sector in India has seen remarkable progress in recent years.
और 2015 से भारत सरकार ने क्षेत्र में 38,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन में 104% की प्रभावशाली वृद्धि भी देखी गई।
Right, India's seafood exports have also seen tremendous success, crossing 60,500 crore rupees mark and reaffirming the country's global leadership in shrimp exports. Shrimp production has surged by 270% over the past decade, creating extensive employment opportunities and empowering fishing communities across the country. And of course, let's not forget, it's also about sustainability. So fish farming, when done right, helps reduce overfishing in oceans, conserves marine biodiversity and provides protein to millions. National Fish Farmers Day is not just a celebration, but a call to action to recognize the vital role of fish farmers and to work collectively towards a more sustainable and prosperous fisheries sector.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Yes, Karishma, you might have heard of the famous tomato throwing festival in Spain. In fact, we had it in one of the Hindi movies also. But did you know that India has its own unique version with mangoes? In the coastal town of Karaikal in Puducherry, thousands of devotees are celebrating the vibrant Mangani or Mango Festival today. Unlike the playful revelry in Spain, here mangoes are thrown with deep reverence offered to Lord Shiv in honor of Karaikal Ammayar, the only woman among the 63 Tamil Shaivite Nayanmars, saints whose devotional hymns shaped the Bhakti movement in South India. We have more from our correspondent on this.
The streets of Karaikal came alive today as the deity of Lord Pichandava, a form of Lord Shiva as a mendicant, was taken out in colorful procession. In a unique and spirited tradition, residents of Karaikal stood atop their rooftops and hurled ripe mangoes down to the crowds below who scrambled to catch them. This symbolic act commemorates the miraculous moment when a mango appeared in the hands of Punithavadi, later known as Karaikal Ammayar, after she prayed to Lord Shiva. Devotees believe catching and eating these mangoes brings divine blessings and fulfills heartfelt desires, especially for those seeking children. Legend has it that Ammayar, upon realizing her husband's fear of her divine powers, renounced her worldly life and beauty and prayed to Lord Shiva for a skeletal form to serve him eternally. Her wish was granted and she came to be worshipped as one of the most powerful female saints in Shaivism. As a part of the Mangani festival, a divine wedding ceremony and Shiva Tandavam dance ritual was held yesterday. The Mangani festival is also marked by cultural events, temple rituals and traditional feasts. Local people prepare vada, payasam and give feasts to the visitors. Dignitaries including Puducherry Minister for Civil Supplies and Consumer Affairs, P.R.N. Thirumurugan, participated as guests in the celebrations and distributed ceremonial gift bags containing turmeric, vermilion, mangoes and other auspicious items to the devotees. This is Vipin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
बिहार महान विभूतियों की धरती रही है। देश में किसान आंदोलन के जनक और भूमि सुधारों के समर्थक स्वामी सहजानंद सरस्वती की भी कर्मभूमि बिहार रही है। उन्होंने पटना शहर के पास बेहटा में सीताराम आश्रम स्थापित किया। स्वामी जी के जीवन पर और किसान आंदोलन पर अध्ययन करने वाले अमरीकी विद्वान वॉल्टर हाउजर का भी नाम प्रमुखता से लिया जाता है। प्रोफेसर वॉल्टर हाउजर ने यहाँ के किसान आंदोलन का काफी गहराई से अध्ययन किया। वे यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। अमेरिका में भी रहकर उन्होंने अपने घर का नाम नीलगिरी और अपनी बेटी का भारतीय नाम शीला रखा। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
प्रोफेसर वाल्टर हाउजर मूल रूप से अमेरिकी निवासी थे और शिकागो विश्वविद्यालय में शोधार्थी भी थे। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन और स्वामी सहजानंद सरस्वती के जीवन के बारे में गहराई से अध्ययन किया। अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने बिहार के लोगों, यहाँ के जमींदारों, किसानों, पहाड़ों और नदियों के बारे में भी अपनी रचनाओं में उल्लेख किया। इस किसान आंदोलन से उन्हें इतना लगाव था कि उन्होंने अपने कई शिष्यों को इस पर शोध करने की प्रेरणा दी। 26 जून को स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि के अवसर पर इस अमेरिकी विद्वान की अस्थियों को उनकी इच्छा के अनुसार सनातन परम्परा के तहत गंगा नदी में प्रवाहित किया गया। प्रोफेसर हाउजर की पुत्री शीला हाउजर ने बताया कि उनके पिता बिहार के लोगों की सहृदयता से काफी प्रभावित थे। वे भारत की विरासत और संस्कृति के बारे में लोगों से जानने की अपील करते थे।
Father was always thinking about India, and I asked my father near the end of his life what he wanted to leave behind, and he said he wanted everybody to understand the beauty of India, especially Bihar, and the kindness and generosity of the Bihari and the Bihari peasants.
स्वामी सहजानंद सरस्वती के जीवन दर्शन से प्रभावित डॉक्टर सत्यजीत सिंह कहते हैं कि प्रोफेसर हाउजर का योगदान सदियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा।
यहाँ के डॉक्यूमेंट जो ले गए बेहटा से, उसे साउथ एशिया स्टडी सेंटर वर्जिनिया यूनिवर्सिटी में खोला और 6 स्टूडेंट्स को PhD स्वामी जी किसान और बिहार के कल्चर पे, साधु और समाज से क्या संबंध है, इस पर रिसर्च करवाया। और उनका अंतिम इच्छा थी कि हमारा अंत्येष्टि जो हो वो स्वामी जी के धर्म उन्हें हिंदू धर्म से हो। और इतना ज्यादा वो अटैच थे, अमेरिका में उन्हें कहा जाता था बिहार का सबसे अच्छा बेटा।
लंबे समय तक बिहार और भारत में रहकर शोध करने वाले प्रोफेसर हाउजर का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में घूम घूम कर विभिन्न पक्षों से बातचीत की। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
And let's now go to the northeast region, where Hanthiyal district in South Mizoram has emerged as the highest scoring district in the entire northeast region, according to District Sustainable Development Goals Index 2023-24, which was released by Niti Aayog on Monday. We have a report on this.
Mizoram has once again proven itself as a leader in sustainable development in the Northeast. According to the newly released Northeastern Region District SDG Index 2023-24 by Niti Aayog, all districts in Mizoram have achieved frontrunner status in the Sustainable Development Goals SDG Performance Scale. Most notably, Nathiyal District has emerged as the best performing district in the entire Northeast region, scoring 81.43, the highest among 121 districts across 8 northeastern states. The second edition of the Northeastern Region District SDG Index was jointly developed by Niti Aayog and the Ministry of Development of Northeastern Region donor, with technical support from United Nations Development Programme, UNDP. The index assesses district-level programme on sustainable development goals across social, economic and environmental sectors. The MLA for the Nathiyal constituency, JJLL Peklua, convey his gratitude that the district efforts to promote sustainable development has been recognized and its hard work respected across the region. He also said that the remarkable advancement aligns with the objective of realizing Viksit Bharat 2047.
Our effort in sustainable development have been recognized. Our district hard work is celebrated across the region. This recognition inspired us to continue working toward a brighter, healthier and more prosperous future for all our people. This outstanding development is the goal for achieving Viksit Bharat 2047.
The report launched in New Delhi is expected to be a key policy tool for evidence-based planning and monitoring. For Parikrama, this is Isaac from Akashvani Aizawl.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
So we talk about the cricket first. In cricket, hosts England were 44 for 2 against India on the opening day of the third test of the Anderson Tendulkar Trophy at Lord's when reports last came in. And earlier, England won the toss and opted to bat first. The five-match series is currently levelled at 1-1. What about tennis, Wimbledon tennis?
Wimbledon tennis tournament में पुरुष और महिला सिंगल सेमीफाइनल तय हो गए हैं. पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बिया के नोवाक जाकोविच का सामना विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर से होगा. और वहीं महिला सिंगल्स पहले सेमीफाइनल में आर्याना सबालेंका का सामना अमेरिका की अमांडा से होगा.
Right, and coming to the business news of the day now, domestic benchmark indices slipped today for the second consecutive day as weakness in IT stocks outweighed gains in financials. At close, the Sensex was down 345 points or 0.41% at 83,190 and the Nifty 50 was down 121 points or 0.47% at 25,355. And if we talk about the 24-carat gold in the bullion market, it was trading at 97,210 rupees per 10 grams, while silver was also trading over 1% up at 1,08,490 rupees per kilogram when reports last came in.
और अब याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
On the 10th of July 1806, the Vellore Revolution started against the British Raj. It was the first instance of a large-scale and violent uprising by Indian sepoys against the East India Company.
After Tipu Sultan was killed on May the 4th, 1799, during the siege of Srirangapatnam, the British troops took over the kingdom of Mysore. The British handed Mysore over to the Wadayars, the former rulers of Mysore, and Tipu's children and their families were exiled to Vellore. However, this strategy soon came back to haunt them.
Tipu's children, their families, and innumerable servants formed a community of Mysoreans in exile, which numbered up to 3,000 and split over a considerable area around Vellore. Tipu's family soon began conspiring to avenge the death of their father and leader.
On November the 14th, 1805, 6 years after the bloody battle at Srirangapatnam, an order was issued by J.F. Craddock, Commander-in-Chief of the British troops, detailing the new military dress code. According to the order, the sepoys had to dress in a uniform and shave their facial hair and were forced to wear a leather turban that had a cockade made from a cow hide. Though the order was passed to establish uniformity, the Hindu sepoys objected to wearing leather headgear.
When 21 sepoys from the 2nd Battalion, 4th Regiment, expressed their resentment, they were subjected to corporal punishment and faced public lashing at Fort St. George in Madras. On the morning of the 10th of July 1806, the sepoys attacked Vellore Fort. A massacre followed, in which more than 100 British soldiers were killed, many of them shot while they slept.
The British flag was lowered by the sepoys, and Tipu's flag, given to them by Tipu's fourth son, Moizuddin, was hoisted. When a British cavalry regiment from Arcot reached the fort, it was already in possession of the activists. Soon, though most of them were killed by the British forces, and the rebellion was crushed.
Though the Vellore Mutiny is often overshadowed by the events of 1857, its effects were felt in Britain. The officers deployed at the fort were questioned about their intentions of introducing the changes that resulted in the uprising.
भारतीय रंगमंच, सिनेमा और नृत्य की महान कलाकार जोहरा सहगल की आज पुण्यतिथि है। जोहरा सहगल का पूरा जीवन कला से जुड़ा रहा। जोहरा सहगल का जन्म 27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था और उन्होंने लाहौर और फिर जर्मनी में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने मशहूर बैले डांसर उदय शंकर के साथ नृत्य प्रशिक्षण लिया। जोहरा सहगल ने उदय शंकर के साथ विश्व भर में नृत्य प्रस्तुतियां दी और बाद में उन्होंने भारतीय नाट्य मंच से जुड़कर कई नाटकों में अभिनय भी किया।
And yes, of course, she has been in many Bollywood movies as a character actor as well. Sehgal was awarded the Padma Shri in 1998, Kalidas Samman in 2001, and in 2004, she was awarded the Sangeet Natak Academy, was presented to her with its highest award, the Sangeet Natak Academy Fellowship for Lifetime Achievement. She also received the Padma Vibhushan in 2010. And next personality we pay tribute to is Bihari Thakur, who was an Indian Bhojpuri language poet, playwright, lyricist, actor, folk dancer, folk singer, and social activist. He is widely regarded as one of the greatest writers in the Bhojpuri language and most popular folk writer of the Purvanchal and Bihar. Thakur is often called the Shakespeare of Bhojpuri and Rai Bahadur. His works consists of more than a dozen plays, monologues, poems and bhajans, which were printed in nearly 36 books. We have a song written by him but sung by Sharda Sinha here for you. Today we also pay tribute to Asad Bhopali on his birth anniversary. Asad Bhopali was an Indian Urdu poet and lyricist who is remembered for his significant contributions to Hindi cinema, particularly in the realm of film lyrics. He wrote songs for numerous films and worked with several renowned music directors. Let's hear one of his songs.
बहुत याद आए वो जब याद आए बहुत याद आए गमे जिंदगी।
Asad Bhopali's lyrics are described as being filled with timeless emotions. Bhopali was one of the lyricists who wrote songs for the 1989 musical hit Maine Pyar Kiya, and in 1990 he received the Filmfare Award for Dil Diwana but could not attend the award ceremony.
Dil Diwana bin sajna ke maane na
परवीन सुल्ताना को भी आज हम याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 10 जुलाई 1950 को असम के नंगांव जिले में हुआ था। वे भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका भी हैं और उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल गायकी में विशेष महारत हासिल है। उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र से ही संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी और उनके संगीत गुरु उस्ताद दिलशाद खान थे, जिन्हें उन्होंने संगीत की बारीकियां सिखाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने भारत और विदेशों में भी हजारों संगीत गाए।
ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार सुना हम।
The Indian Hindustani classical singer of the Patiala Gharana, Begum Parveen Sultana, was awarded the Padma Shri in 1976 and Padma Bhushan in 2014 by the Government of India. and her voice is renowned for its extraordinary range, clarity and versatility. And we also wish a very happy birthday to the little master, one of India's greatest cricketers, Sunil Gavaskar, who is celebrating his birthday today. He was born on this day in the year 1949. Gavaskar is renowned for his technical perfection and excellent resolve as a batter. Among the grittiest openers in Test cricket, Gavaskar's contribution to Indian cricket is huge, as he stood up against the world's finest fast bowling attacks, including the then dominant West Indies side. So we end the program here right now because we don't have much time. Goodbye, listeners. Namaskar.